गलतियों से भरी हुई जिंदगी फिर भी बेहतर है इससे कि हमारी जिंदगी में कोई तहरुक ही ना हो, कोई हरकत ही ना हो, कोई काम ही हम ना करें। तो मेरे ख्याल में अगर छोटी मोटी गलतियां हम जिंदगी में अपने कामों में करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और हमारे घर में या हमारे आसपास के लोग भी अगर इस तरह की छोटी मोटी गलतियां करते हैं तो उनको इतनी डांट पट नहीं करनी चाहिए कि अगली बार वो कोशिश ही ना करें किसी काम करने की। तो हमेशा मेरे ख्याल में कोशिश करें कुछ ना कुछ करने की, और अगर उसमें कामयाबी नहीं भी होती तो मसला नहीं है, नाकामी के डर से ऐसा तो नहीं है कि इंसान जो है एक शख्स घर में बैठ जाए और बिल्कुल वो कहीं बाहर भी ना जाए और इस खौफ से कि अगर वो बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर तो मज़ा ही ना आया ना ज़िंदगी का। बहरहाल हमें जोर लगाना चाहिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि हमारी गलतियों से अगर हमें ही नुकसान पहुंचता है या गलती की हद तक, छोटी सी गलती की हद तक है तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ऐसी गलतियां जिनसे दूसरों को नुकसान पहुंचता है उससे जो है थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए, थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं हसन की तरफ। हसन भी यहाँ, मैं उनके साथ गपशप लगा रहा था और जो है आप लोग अंदर आ गए। जी सलाम, कैसे हैं आप?
वैसे अभी हम लोग हाथ मिला चुके हैं इससे पहले, आपकी खिदमत में हम सलाम अर्ज करते हैं और खुशामदीद कहते हैं आप सबको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। नाज़रीन, एक तो हम आपको बताते चलें कि आज हम लोगों के जो मीडिया का मौजू है वो बहुत ही अहम है, ज़रूर उसको देखिएगा, और यकीनन हम लोगों के हफ्ते के मौजू से उसका काफी रब्त है। अच्छा। इज्जत करना।
जी बिल्कुल, इज्जत करना, एहतराम करना, और इसमें जो है हर चीज का एहतराम, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और आज चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हों। कुछ सवाल भी कल जो है मैंने आपसे किए थे एहतराम के सिलसिले में, बहरहाल इसके बारे में जो है और भी हम लोग बात करेंगे कैसे जो है अपनी शख्सियत का, अपना एहतराम करना, दूसरों का एहतराम करना, छोटों का एहतराम कर। कल मौलाना साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जो हमारे मौजूद थे उन्होंने बड़ी एक जो खूबसूरत बात की, उन्होंने छोटों के एहतराम की बात की और साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो आपके मसा आप किसी जगह पर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में किसी कारखाने में, तो आपके नीचे जो वर्कर्स या लेबर या मजदूर वगैरह जो काम कर रहे हैं उनका एहतराम करना भी बहुत जरूरी है। यहां से एक जो नुकता हमें समझ में आता है वो ये आता है कि पैसे की बेस पे ये कि भाई जिसके पास ज्यादा पैसा है या किसी के पास अगर बहुत ऊंची कोई पोस्ट है तो उस बेस पे किसी का एहतराम करना मेरे ख्याल में गलत है।
वैसे बहुत सारी आजकल के खुसन दौर में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि खुर्रम ने बहुत ही अच्छा इशारा किया इस मौजू की तरफ कि किसी की अच्छी बड़ी पोस्ट है तो कमर तक झुक के हम लोग बकौल हैदराबादियों के पेट में मुंडी दे रहे हैं।
अच्छा।
लेकिन आम हालात में अगर जर्रा बराबर वही शख्स उससे कोई पोस्ट छीन ली गई या किसी भी वजह से उसने इस्तीफा दे दिया, जो भी हो गया, फिर उसको पलट के न पूछना और बल्कि ऐसा वो काम करना कि वो बेचारा शर्मिंदा हो जाए कि हमने आपकी मदद क्यों की। इस तरह के बहुत सारे केसेस देखने में भी आते हैं और हम लोग को बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।
बिल्कुल, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है आप लोग भी हमें बताइएगा ताकि जो है हम जो है मिल बैठ के इसका कोई नतीजा, कल जो है इंशाल्लाह हमने इसका नतीजा निकालना है इस मौजू का, तो बहरहाल नतीजा निकालेंगे। चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा ले लें।
बिल्कुल
जी, वक्फा लेते हैं और उस बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, प्रोग्राम सुबह जिंदगी को आगे चलाएंगे, कहीं जाइएगा मत। जी नाज़रीन, आप लोगों ने एक सबक आमेज दास्तान मुलाहिज़ा फरमाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हाँ, कहते हैं वो मीडिया का दौर है तो हम लोग भाई क्यों पीछे रहें, क्या ख्याल है आपका?
हम लोग मीडिया हैं
लेकिन हम लोग पीछे क्यों रहे इस बात से? तो हम लोगों ने भी जो है आज मेहमान को दावत दी है और हसन आपको बताएंगे कौन है हमारे साथ,
यानी जानी पहचानी शख्सियत हैं, कई हफ्ते से हम लोगों का साथ दे रहे हैं और हम लोगों को वक्त देते हैं, तो हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। गुलजम्मा सुजैन साहब,
शुक्रिया अदा करता हूँ।
बहुत ही अहम मौजू को हम लोग लेके हम लोग चलते हैं, हो सकता है सुबह के लिए थोड़ा, यानी बाज़ लोग कहेंगे ये सुबह कौन सा मौजू लेकर आ गए, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो जो मीडिया के खास किस्म की कशिश होती है उसको शामिल करें अपने प्रोग्राम में ताकि हमारे नाजरीन बैठ के पूरी तरह से देखें और मौजू भी ऐसे लें कि आपका वक्त ज़ाया ना हो, वक्त सिर्फ भरने के लिए ना हो बल्कि ऐसा मौजू हो कि काम आए आप लोगों के और आप लोगों की तशखीस बढ़े। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुद से हम लोगों को शुरू करना चाहिए। मीडिया का सबसे अहम काम यह है कि रास्ता आपको दिखा दे, बाकी काम बाकी जिम्मेदारी आपकी खुद है कि आप लोग सही पहचानना चाहें या ना पहचानना चाहें। अगर कोई मीडिया नहीं कर रहा है तो यकीनन वो अपने फर्ज नहीं निभा रहा, सही कह रहा हूँ या नहीं?
जी 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 जी, और मैं ऐड करता चाहूँगा जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि मीडिया का काम है तालीम का और तदरीस का,
बिल्कुल,
और लोगों को गाइड करने का क्योंकि आप सारी उम्र मदरसों में नहीं रह सकते, दानिशगाहों में नहीं रह सकते, तालीम हासिल बाकायदा इंस्टीट्यूशन में हासिल नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि सिलसिला जारी रहना चाहिए, तो मीडिया आपको आपके घर में टीवी लॉन्च तक पहुंचाता है, वो क्लास जो आप छोड़ के आ चुके होते हैं वो क्लास आपके ड्राइंग रूम में आ जाती है, टीवी लॉन्च में आ जाती है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे जो बड़ा रोल है मीडिया का वो आपको है एजुकेट करना।
बिल्कुल जी। एक चीज़ मैं कॉल इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का बता दूं कि ईरान के रेडियो टीवी के उनके बारे में उन्होंने कहा था, यकीनन ये हर मीडिया की जिम्मेदारी है, लेकिन एक चीज़ जो है बहुत अहम है, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ये सदा व सीमा ऐसे कहते हैं यानी ईरानी रेडियो टेलीविज़न को एक उमूमी यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और ख़ुद ये लफ्ज़ बहुत अहम है कि आम स्कूल नहीं का बल्कि यूनिवर्सिटी का, कि ये ऐसी आला तालीमी मरकज इसको होना चाहिए, ऐसा आला तालीमी मरकज इसको होना चाहिए कि हर एक आके अपने मुताबिक उससे चीज़ें ऐसे यानी नॉलेज गेन करे, इतना इल्म हासिल करे कि उसको दीगर खुद एक कह सकते हैं माहिर बन जाए किसी चीज़ का, यानी यूनिवर्सिटीज़ की खास बात यही होती है कि माहिर बनाती है।
मैंने ये ना हसन देखा है ईरान में वाकयान, मेरी आपको शायद पता नहीं, मेरी शादी क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो ईरानियन है, तो मैंने उन अपने ना ससुराल में यहाँ देखा है कि लोगों की तालीम मीडिया की वजह से, जिन्होंने मसलन स्कूल छोड़ दिया 8वीं जमात के बाद, 10वीं जमात के बाद या 12वीं जमात के बाद
जी।
अगर आप उन आपको वो लोग ना बताएं कि उनकी एजुकेशन क्या है, तो आप समझेंगे ये यूनिवर्सिटी से इनके पास MA की डिग्री है। तो मैंने फिर कुछ इस पर तहकीक की कि ये कैसे मुमकिन हुआ, मुझे पता चला कि ये ईरानियन मीडिया का रोल है इसमें, इन्होंने बड़ी मसल खासकर सुबह के प्रोग्राम्स का, क्योंकि इनको बड़ा अच्छे तरीके से देखा जाता है, खलबत भी होती है उस वक्त, आवर्स भी आपको पता है ये साथ भी ऐसी है कि सब तवज्जो से कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो मुझे पता चला कि ये जो तालीम है ना, ये इंफॉर्मेशन जो इनके पास है सेहत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, घर के बारे में, आराइश के बारे में, ज़िबाइश के और सारे सेहत तो सलामती गजा के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इन्होंने मीडिया से ली है, टेलीविज़न से ली है, रेडियो से ली है। तो ईरान में तो बहुत बड़ा रोल अदा किया है, और ईरान का आपको पता है मीडिया का जो नेटवर्क है वो बहुत पावरफुल भी है, वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या उसके मुताबिक है जो बरतानिया ने एक वक्त में याद किया था या रखा था, लेकिन बरतानिया के मकासद तो आपको पता कि और थे,
बिल्कुल दूसरे
तो ईरान के मकासद और थे,
ये फर्क वसाइल के लिहाज से भी काफी पेशरफ्ता है।
जी जी, बस वसाइल के लिहाज से भी बहुत पेशरफ्ता है। मैं आपको पता कि मैं प्रेस टीवी में हूँ, तो प्रेस टीवी जो है मैं समझता हूँ कि एक अल जजीरा और BBC के मुकाबले का चैनल है दुनिया में, वो इंटरनेशनल नेटवर्क है। मेरे ख्याल में अल जजीरा को तो कहते हैं, वो उन्होंने फंड किया था जो मगरबी ताकतें हैं, खासकर अमेरिका से लोगों ने फंड किया था कि एक आवाज़ निकलती, एक मुसलमानों एक चैनल हो जो मुसलमानों की तरफ से हो लेकिन हमारा नज़र हमारी नज़र भी पहुंचाता रहे।
जी बिल्कुल।
तो हमारा नुक्ता नगाह भी पहुंचाता रहे, लेकिन जो इस प्रेस टीवी है वो खालस वो जो कहते हैं ना अल्टरनेटिव मीडिया, उसका रोल अदा कर रहा है बिल्कुल उसी तरह। तो बहुत इस पर पैसे ज़ाहिर है, इस पर पैसे भी खर्च होते हैं, इस पर बहुत सारा काम भी होता है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम उम्मा में ईरान ये सबसे बेहतरीन काम कर रहा है और मुख्तलिफ ज़मानों में,
और हम लोग कामयाब भी हों। और नाज़रीन एक चीज़ हम आपको बताते चलें कि हम लोग हर हफ्ते एक किसी मौजू को लेकर कि हफ्ते में गुज़श्ता हफ्ते में जो खबरें हुई हैं उसका एक कोई ना कोई एक मौजू लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में तो आज क्या खबर?
ये मेरे पास खबरें तो बड़ी दिलचस्प भी हैं और सियासी भी हैं। आप यहाँ जिससे कहें मैं शुरू कर लेता हूँ। सियासी आपको
सियासी हमारे ख्याल में बाकी हम लोगों के प्रोग्राम तो अच्छे खासे हैं।
अच्छा,
तो एक मौजू का अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी हम लोग गुफ्तगू कर सकते हैं, वैसे वो भी काफी हद तक सियासत से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज जो होती है कि मीडिया से हम लोग कैसे बचे रहें, हर मीडिया से नहीं लेकिन एक मुनासिब जरिए से। आजकल ये था कि मुख्तलिफ ममालिक आजकल NSA का बहुत क्या कहते हैं दौर दौरा है और हर जगह उसी की खबरें हैं, एडवर्ड स्नोडन और इन सब की चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी सुबह को मेरी नज़र पड़ी एक खबर पर कि मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस स्मार्टफोन्स में खसूसन जो होती हैं उसके जरिए जासूसी की जा रही है। 1.5 मिलियन मुख्तलिफ कहा जाता है कि माफ कीजिएगा 150 मिलियन मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस वक्त मौजूद हैं, चाहे वो एंड्रॉयड के लिए हो चाहे iOS के लिए हो, इन सब के लिए कहा जाता है। इनमें से 70% जासूसी के लिए, कैसे बचा जाए? मीडिया है, रोका नहीं जा सकता।
जी जो बचने का सवाल है ना, ये बचना नामुमकिन है। अगर जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्कल, वो नहीं बच सकी, जो बरतानिया के वजीर आजम है डेविड कैमरॉन, अगर वो नहीं बच सके तो वो आप कैसे बच सकते हैं? मुझे इसकी समझ देखें, वो क्यों मैं ये कह रहा हूँ, एंजेला मर्कल के टेलीफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक टीम है, एक पूरी हाईली जो है ना हाईली एडवांस्ड जो है टेक्नीशियंस की टीम है। अगर वो उसको NSA से नहीं बचा सकी, उसकी जासूसी करने से नहीं बचा सकी, तो हमने कैसे बचना है?
देखिए बात सुन,
किस खेत की मूली है। और दूसरी मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ मोबाइल फोन तक महदूद नहीं है, जो ट्विटर है, फेसबुक है, फेसबुक को आपको पता है बहुत सारे लोग स्पाई बुक भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? ये इसलिए है कि ऐसे ही नहीं है, आपको जो सारा फेसबुक जो फैसिलिटीज देता है या ट्विटर देता है, ये मुफ्त में नहीं दी जाती, ऐसे हो नहीं सकता। दुनिया में कोई काम हो, वो कहते हैं फ्री लंच नहीं होता, कोई भी फ्री लंच नहीं होता, उसके अगेंस्ट कोई चीज ली जाती है। क्या होता है कि जब फेसबुक को इतने सारे लोगों तक फैलाया गया, उसका एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया, तो सारे लोगों को तो उन पर सारे लोगों पर उन्हें लाजम नहीं है सर्वेल किया जाए और सर्वेलेंस रखी जाए। उनमें से कुछ हो सकता है 10% हो सकता है 5% हो या 5% हो, इन लोगों पर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा। वो भी जब इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो उनको जो है वॉच करते हैं हर हवाले से, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर भी, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो अपने सेंटर्स में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। तो ऐसे नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का जो खेल खेला जा रहा है, ये ऐसे नहीं है, ये बहुत खर्चा होता है इस सिस्टम पर। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, जो सारी जो आप पर और मुझ पर और आम जो शहरी है उस पर भी की जाती है जासूसी। उसका मतलब ये होता है कि एक सोसाइटी के ट्रेंड्स को जाना जाए, जो मेगा ट्रेंड्स हैं किसी सोसाइटी में, वो ट्रेंड्स क्या हैं, उनको भी मसलन जाना जाए और उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए। जो मोबाइल
से हम लोग यहीं पे गुफ्तगू अपनी रोकते हैं, चलते हैं खुर्रम के पास, यकीनन एक ब्रेक हम लोगों को लेना है, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
जी, आप लोगों की गुफ्तगू बिल्कुल जारी रहेगी। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा वक्फा लेना है और उसमें हम वक्फे में देखेंगे कि कैसे आप लोग हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई बात कहना चाहते हैं इस मौजू, जो बड़ा जबरदस्त किस्म का मौजू हसन ने छेड़ दिया उसके बारे में, तो आप भी जो है हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जी बहरहाल आपने देख लिया हमारे फोन नंबर, हमारा जो ईमेल एड्रेस है और वेबसाइट का एड्रेस जो है, और हम इंतजार कर रहे हैं आपका, आपके कमेंट्स का, आपके सवालों का। और आप कोई बात अगर शेयर करना चाहें हमारे साथ प्रोग्राम में, चलते हैं हसन के पास ताकि हसन गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बाज़ नाज़रीन की तरफ से हम लोगों के पास ईमेल्स भी हम लोगों को मौसूल हुई हैं, और इसके अलावा फेसबुक कमेंट्स में भी लिखा गया है कि उनके इलाके में हम लोगों की नशरियात कट गई हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप ये तआवुन हमारे साथ करें कि बता दें कि क्या दकीक तौर पर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है आपके साथ, यानी कि वहाँ पे चाहे वो यानी उसके फ्रीक्वेंसीज तब्दील हो गई हैं या दूसरा कोई मसला है कि सिरे से आ नहीं रहा है, अगर हम लोग को ईमेल कर दें, हम लोग का प्रोग्राम अगर आप वेबसाइट के जरिए देख रहे हैं तो हम लोग को ज़रूर बता दें कि मसला क्या है, ताकि हम लोग जल्द अज जल्द उसके ऊपर यानी हम काफ़ी तवज्जो दे सकें और जल्द अज जल्द उसे हल कर सकें। तो हमारे साथ रहिए प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, 6:50 हो रहे हैं तेहरान के वक्त के मुताबिक, और 6:30 हम लोग हर रोज़ आपकी खिदमत में होते हैं जुमे के अलावा। गुलजमस हुसैन साहब, फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। एक गुफ्तगू आपकी वही चल रही थी इसके बारे में कि हम लोगों के खिलाफ कैसे जासूसी की जा रही है। कहा जाता है हिंदुस्तान जो है 5वें नंबर पर है, और यकीनन बहुत ममालिक होंगे जिनका नाम नहीं आया है इस सिलसिले में, लेकिन जो विकीलीक्स और ये सारी खबरी ज़राए हो गए हैं नए किस्म के, उन्होंने जो चीज़ बताई है वो ये है कि हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है जासूसी के लिहाज से, कि उनके सारे टेलीफोन लाइंस, सारे खुद स्मार्टफोन जितने इस्तेमाल करने वाले हैं उन पर ख़ास नज़र रखी जा रही है।
उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हिंदुस्तान में 500 मिलियन के करीब मोबाइल फ़ोन हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन अब इस वक्त हिंदुस्तान में है।
अच्छा
हाँ जी, लेकिन स्मार्टफोन्स का भी लगाए तो क्योंकि हिंदुस्तान में पॉवर्टी रेट भी बढ़ा है तो स्मार्टफोन्स की जो मकदार है वो शायद दूसरे ममालिक में, कुछ ममालिक में एडवांस कंट्रीज में ज़्यादा हो। तो जासूसी के नंबर पर है। और ये जो राइजिंग पावर्स है ना, ये जो उभरती हुई ताकतें हैं, उन आपने अगर देखा हो, ये जो स्कैंडल एडवर्ड स्नोडन का सामने आया था नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो सारे ममालिक पर, बहुत सारे दुनिया के ममालिक पर जासूसी कर रही थी, तो उनमें जो टॉप लिस्ट पर थी वो ये जो उभरती हुई ताकतें थी, उनमें हिंदुस्तान बाजार तो दोस्त है अमेरिका का, लेकिन उस पर भी जासूसी हो रही थी। ब्राजील बड़ा दोस्त है लेकिन ब्राजील पर भी जासूसी हो रही थी। ब्राजील के और अमेरिका के दरमियान तो बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो गया था इस बात पर, और आखिर पर उन्होंने ओबामा को मजबूर किया माफी मांगने पर भी। एक वो उस तरह की पूरी उसने माफी तो नहीं मांगी, उसने इस बात का इजहार किया कि मसलन हमें इस पर कंसर्न है, हमें परेशानी हुई है, और यही बात जर्मनी के साथ भी हुई। अच्छा, यूरोप के जो ममालिक हैं ये बहुत बड़ा दोस्त समझते थे अपने आप को अमेरिका पर, इन्होंने देखा कि सब पर जासूसी हो रही थी, और खासकर कहते हैं ऑस्ट्रिया में तो एक नेटवर्क पूरा बनाया हुआ था NSA ने, और कि जिससे पूरे पूरे इस पूरे यूरोप को वाच किया जाता था, पूरे खित्ते को वाच किया जाता था। और इसी तरह चाइना पर जासूसी की बहुत बड़ी मकदार में हुई, कंपनियों पर, ट्रेंड्स सारे। तो ये जासूसी का सिलसिले, इसके मकासद बहुत सारे हैं। पहला मकसद तो यही है कि जो अपनी इक्तसादी वो ताकत है उसको दफा किया जाए। किस तरह मसलन जो आपके हरीफ हैं या आपके जो अभी हलीफ हैं या बाद में हरीफ हो सकते हैं, वो किस तरह उनकी जो है साजिशें, उनकी जो प्लान्स हैं, उनको उनसे बचा जाए और अपनी ताकत को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो किया ये सारी जासूसी जाती है सिक्योरिटी के नाम पर। ये चीज़ दिलचस्प है कि ब्राज़ील से अमेरिका को क्या खतरा हो सकता है,
या हिंदुस्तान
या जर्मनी से क्या खतरा हो सकता है, इस तरह नहीं है। इसके मकासद बहुत वसी होते हैं, और ये क्योंकि ताकत का एक जरिया है कि आपको पता है कि कौन सा ख्याल किस लीडर के जहन में कौन सी बात चल रही है
जी।
तो उसको जो है ना कहते हैं प्रीएम्प्ट करने के लिए, उसको
उसके खिलाफ एक
जी एकदम पेशकदमी करने के लिए, तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है या बनाई जाती है। और सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा, बहुत सारे ममालिक हैं जो कर रहे हैं, अपने शहरियों पर भी कर रहे हैं और दूसरे ममालिक पर भी कर रहे हैं
जी। बहुत ही अहम चीज़ आजकल हो गई है कि हम लोग मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या इस तरह की सोशल मीडिया जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई नज़र रख रहा है
जी जी।
अब अगर हम चाहें कि हम पर कोई नज़र ये रखे हुए, वो तो कुछ नहीं किया जा सकता उसका, लेकिन हम लोगों की तरफ से यकीनन जैसा कि आपने कहा प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो है इस्तेमाल करने चाहिए, बल्कि ये पेशकदमी हम लोग करनी चाहिए ताकि हम लोग ऐसी कोई चीज़ पेश न कर दें कि उसमें कोई ख़तरा हो। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत आसान हो कहना, लेकिन वो एक पज़ल को मुकम्मल कर रहा हो, तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, एक राय हल।
ये एक तो इसकी सबसे राय हल आसान है, जितना आपके पास मोबाइल जो है कदीमी होगा, वो कहते हैं जितना पुराने मॉडल का होगा उतनी जासूसी मुश्किल हो जाएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि वो जो है नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि इसका रابطہ तो सिम के साथ भी है ना, सिम कार्ड के साथ भी है, सिर्फ मोबाइल के साथ तो नहीं है, मोबाइल में तो। लेकिन जितना मोबाइल जदीद होगा उतनी जासूसी आसान है। ये जो हमने पढ़ा है, जो हमें पता चला है कि जो होता रहा है वो असल में इस तरह है कि जितना सेट आपके पास कदीमी होगा और सस्ता होगा उतनी मुश्किल है। तो ये तो आप अगर आप अपना सेट जो कीमती सेट है सेक्रीफाइस कर सकें तो आप पर जासूसी के चांसेस कम होते चले जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं खुर्रम के पास और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगर वक्त मिला तो गुफ्तगू जारी।
बहुत शुक्रिया हसन, और बड़ा अहम और दिलचस्प मौजू पे आप लोग बात कर रहे हैं, और इस पे एक सवाल जो बड़ा अहम उठता है वो ये उठता है कि आम लोग जो आम बातें करते हैं मोबाइल फ़ोन पे या आम उनकी गपशप होती है फेसबुक या मुख्तलिफ किस्म के दूसरे जो वेबसाइट हैं सोशल, उनके ऊपर जासूसी करने का क्या मकसद बनता है?
देखिए, एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो मेरे समझ में आया
जी,
उसमें वो था कि खुद यूरोप से जो जिन लोगों का ज़्यादा रबता है वो ये काम करेंगे, उससे पहले के मसलन अपने सामने वाले से जो भी भाई बहन जो भी है उससे बात करने से पहले एक एनएसए को एक सलाम फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करें।
बिल्कुल, ये जो है सवाल बड़ा अहम है और ये हमें सोचना चाहिए इस पे लोगों को भी, और खुद जो ये एजेंसीज काम करी इनको भी सोचना चाहिए कि भाई अपना पैसा अपना टाइम क्यों ये लोग जाया कर रहे हैं आम लोगों की जासूसी करके। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुत खूबसूरत से खयाम के अशआर हैं, वो सुनते हैं और उसके बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होंगे और प्रोग्राम को गुफ्तगू आगे चलाएंगे। जी खुशामदीद आपको कहता हूँ एक बार फिर प्रोग्राम में। और हसन यहाँ पर हमारे पास एक कमेंट आया है फरहत जाफरी साहब का और उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास आपका लिंक जो है वो 100% बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और लियाकत अली साहब ने भी एक हमें कमेंट दिया है, इंशाल्लाह वो भी मैं पढ़ूंगा आपकी खिदमत में। अभी आप लोग जो है गुफ्तगू को आगे चला सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, एक बहुत ही अहम सवाल खुर्रम ने उठाया कि आम लोगों से फिर क्यों जासूसी की जा रही है।
मैंने आपको पहले जैसे बताया इसका आम लोगों पर जासूसी करना बहुत बहुत महंगा पड़ता है, ये तो बिल्कुल सही बात है इन्होंने की। इसको कैसे किया जाता है, इसको जो है स्टोर किया जाता है एक बहुत बड़ी जगहों पर स्टोर किया जाता है, सारी को वॉच नहीं किया जाता, उसमें से कीबर्ड पिक किए जाते हैं। अगर इन्हें काम की कोई चीज़ चाहिए होती है तो उन कीबर्ड्स की मदद से ढूंढी जाती है। अच्छा होती क्यों है, आम लोगों पर जासूसी इसलिए होती है कि किसी सोसाइटी के मेगा ट्रेंड्स को जाना जाए। मेगा ट्रेंड्स क्या होते हैं, मतलब कि वो मुआशरा जो है कैसे सोच रहा है, उसकी इकदार कौन सी हैं, उनकी वैल्यूज़ में कौन सी तब्दीली आ रही है, कोई तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, या इन्हतात किसी मुआशरे में आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, वो उसकी असबाब क्या हैं, अपने मुल्क के राहबरों के रहनुमाओं के बारे में सियासी हो मजहबी हो उनके बारे में उनकी क्या नज़र है निगाह है और किस तरह सोचते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँगा तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी रहेगी। जब इन्होंने कजाफी को हटाना था तो इन्होंने इस उस सोसाइटी के मेगा ट्रेंड्स का एनालिसिस किया, इन्होंने कहा कि कितने फीसद लोग हैं जो इसके खिलाफ हो चुके हैं। जब 40 साल की हुक्मरानी हो तो ज़ाहिर है 40 साल की हुक्मरानी में बहुत बड़ी मुखालफत, आप बहुत जितने मर्जी अच्छे काम कर लें वो बहुत सारी मुखालफत भी जन्म ले लेगी। तो इन्होंने देखा कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इसे नापसंद करना शुरू हो गया है, बहुत सारा हिस्सा एक ऐसा है जो न्यूट्रल भी है। तो अगर इन्होंने सोचा कि अब इस वक्त जंग छेड़ी जाए इसके खिलाफ तो मुआशरा जो है लीबिया का वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और यही बात हुई थी जब इराक पर हमला किया गया, तो उन्होंने जब मेगा ट्रेंड्स को एनालिसिस किया इन्होंने देखा तो ये तो सारे का सारा मुआशरा ही इसके खिलाफ हो चुका है, डिक्टेटर के खिलाफ हो चुका है। तो इन्होंने इनको पता चला कि अब बहुत आसान है इसको हटाना। तो ये मेगा ट्रेंड्स होते हैं, इसके मुख्तलिफ मकासद होते हैं इस्तेमाल करने के। ये मैंने जो दो मिसालें दी हैं ये मसल में क्लियर करती हैं कि इसके सियासी मकासद क्या होते हैं। अच्छा। और इसके अलावा इसके मकासद होते हैं मसल जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सीक्रेट जो हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को बेचे जाते हैं, मसल जो मशरूब की कंपनियाँ हैं या जो है वो कहते हैं फास्ट फूड की कंपनियां हैं, तो उस उनका ट्रेंड उस माशरे में कितना है, पजीराई कितनी है और कैसे पजीराई मिल सकती है, ये माशरा कैसे सोच रहा है, ये इस खास प्रोडक्ट को कितनी अहमियत देगा कितनी नहीं देगा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये सेल की जाती है बेची जाती है इन कंपनीज को। अच्छा। या ये कंपनीज कहें हाँ जी इनसे
वो भी जो वाबस्ता है खुद उन्हीं, यानी कह सकते हैं कि उन्हीं ताकतों से।
जी जी उन्हीं ताकतों से, उन्हीं ताकतों से। मसा मैं आपको बताऊं ये ऐसे नहीं होता, फेसबुक जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है जो आप पर जमा करता है वो कहाँ से पैसा लेता है, आपने देखा कोई एडवर्टीजमेंट चल रही हूँ जो उस पर या कोई चीजें चल रही हूँ, नहीं होती वो कहाँ, ये जो आपके सीक्रेट्स हैं किसी भी सोसाइटी के ये बेचे जाते हैं और जब बेचे जाते हैं तो उन्हीं से ज्यादा पैसा आता है और मिलता है। अच्छा, और एक इंटरलिंक नेटवर्क है पूरा। जी
इसमें एक फारसी में एक मसल है कि जो बिल्ली होती है वो कभी खुदा के यानी क्या कह सकते हैं कि रजा के लिए वो जो है चूहा नहीं पकड़ती, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो इस सिलसिले में भी कारीगर है काफी चलते हैं खुर्रम के पास।
और एक सवाल एक छोटा सा यहाँ पर पूछना चाहूंगा आप लोगों की बहस के अंदर, माफ कीजिएगा, और वो ये है कि एक तरफ तो ये एजेंसीज वगैरह ये सोशल वेबसाइट्स वगैरह के जरिए जो है जासूसी करी है, दूसरा एक और जो बड़ी चीज देखी जाती है और वो मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान है उस पर थोड़ा कमेंट करें कि कुछ ऐसे लोग जो है मुख्तलिफ प्रोफाइल्स के साथ जो है ऐसी वेबसाइट्स पे बैठे हुए हैं जो दूसरे लोगों की ब्रेन वॉशिंग में मसरूफ हैं, ये इनके क्या किस तरह इनका वजूद है और ये कितने कामयाब हैं आपके ख्याल में?
ये बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त सवाल है। आप देखें, ये आपको दिलचस्प बात, जो मैं अपने मुसलमान माशरे की बात करता हूँ, मुसलमान माशरे में जो भी तफरका फैलाने वाली साइट होगी वो उसकी उसके जो है ना लाइक्स की तादाद जो है 1 लाख से फौरी क्रॉस करेगी या पहुंचेगी और फिर 2 लाख तक जाएगी, हो सकता है 500,000 तक चली जाए। वो कैसे होता है? ऐसे नहीं होता। जो जो भी साइट्स मोहब्बत का प्रचार करने वाली हैं, अमन का प्रचार करने वाली हैं, मुस्लिम उम्मा के इतिहाद की बात करने वाली हैं, वो आप देखेंगे वो पेज ही बंद हो जाएगा, उस पेज ही जाता रहेगा। वो ऐसा क्यों होता है? उस ऐसी साइट्स को, ऐसे पेजेस को बाकायदा जो है इनकरेज किया जाता है, बाकायदा प्रमोट किया जाता है। और एक अगर एक खास टारगेट जो है वो अगर अचीव कर जाएं, उस लेवल तक चले जाएं, तो उन्हें फंड किया जाता है।
अच्छा
जी, उसको उनको फंड किया जाता है। क्योंकि आपको मैंने एक हमारी पहले बहस में बात हुई थी कि मुसलमान माशरे के बारे में जो उन्होंने सोचा कि इसको कमजोर करने का सबसे अहम तरीका यह है कि इसके अंदर तफरका पैदा किया जाए। आप देखें जो सोशल वेबसाइट्स हैं अभी, खासकर फेसबुक में पर तो बहुत सारी साइट्स हैं, वो जिस तरह तफरका फैला रही हैं, वो तो पुराने जो थे वो कहते हैं मजहबी रहनुमा थे उनसे बहुत आगे चली गई हैं। वो तो उन्होंने तो बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। ऐसे नहीं होता, मसलन उनको इनकरेज किया जाता है और बाकायदा फंड किया जाता है। और बहुत सारी अब तो इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं बहुत सारी साइट्स में जो इस काम में जी बिल्कुल होते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलजम्मस हुसैन साहब, बहुत ही अहम गुफ्तगू रही। अब हमारे नाजरीन पर है कि वो किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते हमने एक उसके ऊपर हमने लगाया था कि कह सकते हैं कि पूछा गया था, उसमें मैंने कहीं से शेयर किया था अपने से पेज पर फेसबुक के कि हम लोग कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं या फेसबुक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मुख्तलिफ जवाबात हम लोगों को मज़ेदार भी काफ़ी मिले। तो इसमें जो है खुर्रम भाई अपना यानी काफ़ी लोगों की जिम्मेदारी है अब कि सही तरीके से इन सारे मसाइल को समझ सकें और एनालाइज कर सकें, उस पर तवज्जो दें।
बिल्कुल, जाहिर बात है इंसान को जो है जो काम एक शख्स कर रहा है उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि जो है मैं ये काम करूंगा तो इसका क्या नुकसान है, क्या फायदा है, पर ये सोच विचार के करके ही कोई काम करना चाहिए। एक कुछ जो है मजेदार किस्म की आपको बातें लेके आया हूं, अगर इजाजत दे तो।
मैं जो है मजेदार तस्वीरें देख रहा
जी। देखें यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प चीज जो मुझे सुनने में मिली हसन, वो ये थी, मैं चाहूंगा आप लोग भी शामिल हो इस बहस में, क्योंकि जो है बड़ी दिलचस्प चीज थी, वो ये थी कि जैसे कि आप लोगों को ये जो हिटलर का जो ये सलूट है इसके बारे में तो पूरी दुनिया को बार बार पता होगा। दिलचस्प चीज जो देखने को मिली वो ये है कि ये कुछ तस्वीर बड़ी पुरानी 1920 1910 की हैं और ये अमेरिका की हैं, अमेरिका का झंडा भी आपको नजर आ रहा है और ये बिल्कुल वही सलूट जो नाजीज जो किया करते थे वही सलूट यहाँ पर देखने में आपको आएगा। अब जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया कि भाई इसकी कहानी क्या है इसके पीछे, तो पता चला कि इस ये जो सलूट है ये तकरीबन 1880 से लेके 1930 तक जो है स्कूलों में अमेरिका में ये सलूट जो है कंपलसरी था। और जब सुबह जैसे हमारी सुबह सवेरे जो है वो तराना पढ़ा जाता है और असेंबली होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो है अमरीकी स्कूलों में बच्चों को ये चीज सिखाई जाती थी। और इसके बारे इसके साथ ये एक जुमला भी बोलते थे और ये मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, कुछ तस्वीर में और भी आपको दिखा दूं, ये भी आप देख सकते हैं। और कहते हैं कि 1930 में जब कहते हैं कि नाजीज ने इस सलूट को अपना लिया तो फिर जो है अमेरिका ने जो है एक और रास्ता अपनाया कि वो जो है बजाय इसके कि इस्तेहात जो है हवा में ऊपर लेके आए, उन्होंने कहा कि आपके बाद जो है हम हाथ को दिल पे रखेंगे, तो वो जो है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाएगी। और इसके अलावा कहा जाता है कि ये जो सलूट था सबसे पहले एक जेम्स बी उपहाम साहब थे और वो एडिटर थे, यूथ कंपेनियन एक मैगजीन था उसके, उन्होंने ये सलूट जो है बारह शुरू करवाया था। और ये सलूट जो है इसमें जब ये सलूट किया जाता था उसमें ये भी कहा जाता था कि मैं जो है अपने जो है झंडे को हमेशा सामने रखा जाता था और सलूट करता हूँ। और लेकिन इसके मकासद के बारे में एक जो चीज़ लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि ये सलूट बच्चों को इसलिए स्कूलों कॉलेजों में कहा जाता था कि इनके जहन में था कि एक मिलिट्री किस्म की सोच, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मिलिट्री में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मामूलन जो है उनका मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी सोच जो है बच्चों में छोटी सी उम्र में जो है उनमें डालने की जो है बहरहाल कोशिश की जाती थी। और जो है ये सारी जो तस्वीर जो है बहरहाल मुझे जब मिली तो मुझे बड़ा जो मैंने ताज्जुब किया। और यहाँ पे ये भी एक चीज और भी यहाँ लिखी हुई थी कि अमेरिका के अलावा इटली में भी कुछ अरसा ये सलूट जो है अपनाया गया था और स्कूलों में जो है बिल्कुल अमेरिका की तरह ये सलूट किया जाता,
लेकिन उसके बाद काम ये किया गया कि जब यानी हिटलर का सामने आया किस्सा और उसमें अपनी मजलूमियत अचानक उनको दिखानी पड़ी खुसा अमरीका और उनके साथियों ने, तो एक काम जो किया गया वो अपना हिस्सा तो गोल हो गए बिल्कुल कि हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं थे, और इसके बाद जो कोई करेगा तो वो हिटलर से ही मुशाबहत रहा।
अच्छा सही, ये भी दिलचस्प बात थी। और हमारा ये एक तस्वीर जो है बिल्कुल मुझे इन तस्वीरों में बड़ी दिलचस्प किस्म की तस्वीर मिल गई कि इसमें दिखाया हुआ ये अब ये जो है हिटलर की जो है वो
ऐसे मैं अपने साथियों से चाहूंगा कि थोड़ा इसको जूम करके
पता चल जाए दायरा। बहरहाल ये जो है बार मजेदार किस्म की तस्वीर थी कि एक शख्स जो है वो सलूट नहीं कर रहा बाकी सारे जो है वो सलूट कर रहे, तो मैंने कहा ये भी अपने नाज़रीन के लिए ले आई जाए तस्वीर। बहरहाल चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग वक्फा लेंगे और उसके बाद कुछ एक सब्जी है खास किस्म की उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद दोबारा फिर चलेंगे हसन के पास। जी नाज़रीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं हम लोग, और जैसे कि मैं अभी नाम बता रहा था हसन को, इस सब्जी का नाम जो आपको दिखने में मिल रही है एस्पारेजस है, शायद जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में थोड़ी मुश्किल से मिले, कैन वगैरह में मिल जाए या जो इंपोर्ट होकर जो बाहर से सब्जियां आती हैं वो मिले, लेकिन जो है मेरा फ़र्ज ये बनता है कि मैं आपके इसके फ़वाद बताऊँ। थोड़ी सी जो है मैं शुरू में आपको इसकी तफसील बताते चलूँ कि इसमें क्या किस तरह के वाइटमिन और मिनरल्स जो हैं मौजूद हैं। कहते हैं कि बेहतरीन एक सोर्स है वाइटामिन के की। वाइटामिन के क्या करता है और मैं जो है मेरे जहन में यही चीज़ है कि आपको अभी तक पता चल जाएगा होगा कि वाइटामिन के क्या फायदे हैं। वाइटामिन के जो है वो हमारा जब हमें चोट लगती है और उससे खून निकलता है तो कुछ देर बाद खून रुक जाता है, उस इस अमल को कहते हैं जो है खून की क्लॉटिंग। वाइटामिन के खून की क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है, अगर इंसान के बदन वाइटामिन के कम हो तो खून की क्लॉटिंग नहीं होती। उसके बाद फोलेट जो आयरन से जुड़ी हुई एक तकरीबन चीज है उसको कहते हैं 60% जो फोलेट है इस सब्जी के अंदर मौजूद होता है, और जिनको जिनके अंदर आयरन की या फोलिक एसिड की कमी है वो भी इस सब्जी जो इसका नाम एस्पैराजस है उसका इस्तेमाल करें। और भी बहरहाल इसमें चीज़ें हैं, और एक और जो चीज़ कही जाती है इस सब्जी के बारे में वो ये है कि वाइटामिन बी का पूरा जो खानदान है, क्योंकि जैसे पता है आपको वाइटामिन बी 1, 2, 3 इस तरह करके जो है चलता रहता है, उसकी जो है एक बेहतरीन सोर्स है। इसी वजह से कहा जाता है कि जिन लोगों को निज़ाम इन्हज़ाम की मुश्किलात हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा जरिया है ताकि वो जो है अपने उनका जो नज़ाम इन्हज़ाम है बेहतर हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट खास किस्म का नशास्ता एक खास किस्म का होता है जिसको कहते हैं इनोलिन। इनोलिन को प्रीबायोटिक का नाम भी दिया जाता है, जैसे कि एक पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर आतिया निशात ने इन प्रीबायोटिक्स पर बात की थी, एंटी ऑक्सीडेंट्स चीज़ें जो हमें मुख्तलिफ किस्म के कैंसर से बचाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये इनोलिन जो है एक तो हमें हमारा जो आंतों का कैंसर है उससे हमें बचाता है, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो एलर्जीज हैं हो जाती हैं हमें उनसे हमें बचाता है, एलर्जीज का आपको पता है आजकल मुख्तलिफ किस्म की गजाओं से जो है एलर्जीज होती हैं उससे बचाता है, और एक और जो चीज़ कही जाती है कि इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होती है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि फाइबर जो है हमारी आंतों के लिए हमारे मेदे के लिए बहुत अच्छा होता है। वाइटामिन बी के जो इसके अंदर पूरी खानदान जो वाइटामिन डी का इसके अंदर मौजूद है उसके कुछ जो फायदे बताते चलूं वो ये है, कहते हैं कि हमारे जो ब्लड खून में जो शुगर की मिकदार है उसको कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मुफीद सब्जी है। वैसे भी कहा जाता है जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है जितनी भी सब्ज रंग की सब्जियां हैं उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करें, वो उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसकी एक जो बहुत अहम वजह है वो ये भी है कि सारी सब्ज किस्म की सब्जियां जो हैं उनके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और उसके साथ आयरन की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है। डायबिटीज के मरीज क्योंकि बहुत सी चीजें उनको खाना मना होती हैं इस वजह से उनमें थोड़ी सी जो कमजोरी होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि मछली और जितनी सब्जियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो कमजोरी जो है उनकी पूरी हो जाए। تو یہ بہرحال یہ ایس پارا جس کے بارے میں کچھ تفصیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. چلیں گے حسن کے پاس, دیکھتے ہیں حسن جو ہے گفتگو کو آگے کہاں لے کے جائیں گے.
بہت بہت شکریہ خرم. ہم لوگ کے پاس وقت کتنا ہے ہمارے ساتھ,
وقت جو ہے آپ کے پاس محدود ہے, لیکن جو ہے بہرحال آپ گفتگو کریں اور میں آپ کو بتاؤں گا کتنا.
محمد حسین صاحب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی مفید چیزیں ہم لوگوں کو, کم سے کم ہمیں تو بہت ہی فائدہ پہنچ رہا ہے. ابھی ایک میری نظر پڑ رہی تھی ایک خبر پر کہ ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی یعنی فیملی ریلیشنز جو ہیں کافی حد تک کمزور ہو گئے, جو گھرانے میں ایک رابطے ہو گئے وہ بہت کمزور پڑ گئے. کیا اس میں زیادہ تر یعنی دیکھا جاتا ہے کہ جب رابطے کمزور پڑتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس بیچ میں آ جائیں اور ان فاصلوں کو بھریں اور اپنا فائدہ اٹھائیں. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم لوگوں کے خلاف, ہم یعنی اپنا کام ہم لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے؟
یہ دیکھیں, اس کی تو دو تین وجوہات ہیں. ایک تو پہلے جب فیملی, وہ کہتے ہیں نا جدید جو فیملی ہے وہ نیوکلیئر فیملی ہے, جو دو لوگ ہیں, دو لوگ ہی گھر میں کام کرنے والے ہیں اور دونوں کام پر جاتے ہیں
جی.
کبھی ان کی گھر میں ملاقات بھی بڑی کم ہوتی ہے, نہ گھر میں اس طرح نہ دادی اماں ہیں نہ نانی اماں ہیں جو بچوں کو دیکھ سکیں, نہ ایک جو فیملی یونٹ کا کانسیپٹ تھا خاص کر پاکستان اور ہندوستان میں بڑا, وہاں بھی ٹوٹتا جا رہا ہے. جب یہ اصل میں جو ہے نا ترقی کے کہتے ہیں نقصانات میں سے ایک ہے کہ جب فیملی ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات بتاؤں جو اس میں سب سے اہم ہے کہ جیسے فیملی یونٹ ٹوٹتا ہے نا, اس طرح کا جس طرح کا ہمارا خاندانی نظام تھا
جی.
تو اس کے ساتھ ہی سماجی برائیوں کا دخل ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی جو میڈیا کی بھی جیسے آپ نے کیا, اگر ایکسپلائٹیشن یا اگر میڈیا ایکسپلائٹ کرنا چاہے تو اس کی ایکسپلائٹیشن بھی شروع ہو جاتی ہے
جی.
کیونکہ جتنا میڈیا کو بھی آپ ایک حد تک ایک وقت دینا چاہیے, وہ مثلا ایک چھوٹے بچے کو جو ہے اس کے لیے سب سے مفید وقت تو یہ ہے کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ, اپنی دادی کے ساتھ, اپنے دادا کے ساتھ یا نانے کے ساتھ وہ اثر کرے
جی.
جو اس کو مثلا کہانیاں سنائے, جو ان کو علم و ہنر کی باتیں بتائیں, جو ایک عرصے تک چلتی رہیں, نہ کہ اس ان بچوں کو جو چھوٹی عمر میں اپنے وقت سے پہلے کی چیزیں بتائی جائیں. یہ کانسیپٹ, یہ جو شعور ہے میڈیا میں تو نہیں ہوتا
جی,
کہ کون سا دیکھ رہا ہے یا کون نہیں دیکھ رہا, تو وہ بچوں کا اپنی عمر سے پہلے ایکسپوز ہو جانا یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے اور بن جاتا ہے. یہ اسی لیے یہ جو ہمارا ہمارا جو فیملی کا یونٹ کا سسٹم ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹا ہے, بہت تک ٹوٹا ہے
جی.
اسی کی وجہ سے یہ سماجی برائیوں نے بھی جگہ لینی شروع کر دی ہے.
بہت بہت شکریہ گلجمس حسین صاحب, بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہم لوگوں کی, انشاءاللہ کی جاری رہے گی. اور ناظرین, اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی مشورہ ہو کسی خاص چیز کے بارے میں, آپ لوگ ہم لوگوں سے یعنی چاہتے ہوں کہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں آج کے پروگرام کے بارے میں, خصوصاً میڈیا کے حوالے سے, ذرائع ابلاغ کے حوالے سے, تو ضرور پوچھیے گا, ضرور بتائیے گا کہ کیا ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. چلتے ہیں خرم کے پاس.
بہت شکریہ حسن, اور میں بھی ہمارے مہمان گلجمس حسین صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو ہے کچھ دیر کے لیے آنکھیں کھل جاتی ہیں جب ہم جو ہے کچھ خاص قسم کی خبروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں, ہمیں خود جو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو بہرحال بہت مزہ آتا ہے پروگرام میں, اور اسی طرح ہم انشاءاللہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے مزے کے پروگرام لاتے رہیں گے. یہاں پر لیاقت علی صاحب نے جو ہے کہا ہے کہ اللہ آپ کی پوری ٹیم کو صحت, سلامتی اور ترقی دے. بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے بہت پسند آتا ہے, اور اعجاز حسین صاحب بھی ہمارا پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مہمان کے ساتھ جو ہے آپ کا پروگرام, ایک خاص قسم کے مہمان ہیں جو پاکستانی نیوز چینل سے ان کا تعلق ہے, اس کے ساتھ وہ ہمارا پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور بہرحال ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی, میں نے نمبر جو ہے ان کا اپنے کنٹرول روم میں دے دیا ہے. یہاں پر ہم جا رہے ہیں ایران کا ایک بہت خوبصورت شہر ہے آستارہ, جو مجھے جو ہے خاص طور پہ بہت پسند ہے, کیونکہ بہت ہی خوبصورت شہر ہے, اس میں جو گھر ہیں اس کے ان کی چھتوں کے اوپر مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں, بڑی خوبصورت جگہ ہے. بہرحال چلتے ہیں وہ آستارہ کی سیر کرتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین, پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام صبح زندگی میں. 7:18 بس تقریباً 19 ہونے والے ہیں, ٹیلی فون سے ہمارا رابطہ ہو چکا ہے
جی. تو میں جو ہے سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ مولانا سید ثنا عباس صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. ناظرین, آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, اور مولانا صاحب میں جلدی سے ایک مختصر سوال پوچھ لوں، اس کے بعد حسن آپ سے سوال پوچھیں گے. سوال میرا یہی تھا کہ پیسے کی بنیاد پہ، کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا ہفتے کا موضوع جو ہے احترام چل رہا ہے، آج کل ہم لوگ پیسے کی بنیاد پہ یا اگلے کی پوسٹ کی بنیاد پہ اس کا احترام کرتے ہیں، شخصیت کو دیکھا ہی نہیں جاتا بالکل بھی.
جی ہلو.
جی جی.
تو اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، اگر ہم دیکھیں آیات قرآنی اور معصومین کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں، تو واضح طور پہ ہمیں اس بارے میں مل جاتا ہے اور آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ آیا کس کا احترام کیا جائے کس کا نہ کیا جائے. تو جب بھی کبھی احترام و تکریم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے میں جو ہے زندگی بسر کرنے والے کے مختلف طبقے نظر میں ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کبھی پیسے والا سامنے ہوتا ہے، کبھی علماء سامنے ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ سامنے ہوتے ہیں. تو اگر قرآن کی نگاہ میں دیکھیں تو پروردگار جہاں خود اپنے بزرگوں کے احترام کی بات کر رہا ہوئی، والدین کی جب بات کے احترام کی بات آتی ہے تو پروردگار ارشاد فرماتا ان کے سامنے جاؤ تو اپنے کاندھوں کو جھکا کے اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے اور تکبر اور اس کے ساتھ مت جاؤ. اسی طرح استاد کا احترام ہے، جب عالم دین کا احترام آتا ہے تو حل یستوی الذین یعلمون والذین هم لا یعلمون. اسی طرح مختلف اگر ہم دیکھتے جائیں تو آیات بھی ہمارے سامنے آتی جائیں گی اور معصوم کی حدیثیں. تو کہیں بھی بہرحال جتنا میرا مطالعہ، ایک مبتدی طالب علم ہوں، اور میں نے اس میں آج تک کہیں نہیں دیکھا، اور جہاں تک دیکھا ہے وہ مذموم قرار دیا گیا ہے اور مذمت قرار دی گئی، مذمت کی گئی ہے اس کام کی کہ انسان پیسے کی بنیاد پہ جو ہے کسی کی احترام و اکرام کریں.
جی بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال جو اس سلسلے میں تھا، جیسا کہ آپ نے وہ کیا کہ والدین کا احترام کرنا، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور آج کل کے معاشرے میں بہرحال معاشرہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود نوجوان نسل کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی سامنے جو ہے وہ کیسے احترام کرے، ماں باپ کا شرمندگی ہوگی دوستوں کے سامنے، کیا کرنا چاہیے؟
جی ماں باپ کا احترام، شرمندگی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جب مختلف اگر نگاہ سے دیکھیں، مختلف جنبے سے دیکھیں، تو ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں، جس وقت ماں کے خاص طور سے ماں کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے، ماں کی وہ خدمات ہیں، ماں نے وہ ہمارے لیے زحمتیں قرار دی ہیں، وہ ہمارے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں جو کبھی بھی بلائی نہیں جا سکتی ہیں. تو ماں باپ کا احترام بالکل اسی طرح کی رہبر معظم انقلاب کی خدمت میں ایک وزیر جب پیش ہوتا ہے ملاقات کے لیے، تو ساتھ میں جو ہے ان کے والد ہوتے ہیں، تو وہ لے کے آتے ہیں اور احترام کے ساتھ، تو رہبر ان کی بہت تحسین و داد و تحسین سے ان کو نوازتے ہیں، کہتے ہیں تم وزیر ہو آج، لیکن جو کچھ ہو اس باپ کی خاطر ہو، باپ نے تمہیں پرورش ایسی تربیت و تعلیم دی کہ آج تم یہاں تک پہنچے ہو. تو اگر علماء اور معصومین کلن ہم دیکھیں، اگر یعنی بزرگان کی نگاہوں میں، تو ہمیشہ بزرگان نے اس بات کی تحسین سے قرار دیا ہے، داد و تحسین سے نوازا ہے کہ ماں باپ وہ شخصیت ہیں کہ پروردگار نے جس کو جو اپنے بات قرار دیا ہے کہ جن کی تکریم و تعظیم کی جائے.
بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت ہم لوگوں کے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ رہیں گے. کل کے موضوع کے بارے میں جلدی بتا دیں.
کل کا موضوع جو ہے، جیسے کہ ہمارے ناظرین کو پتا ہے، کل جو ہے ہم اپنے ہفتے کے جو موضوع ہے اس کو جو ہے ایک نتیجے پہ انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے. اور
آخر میں یہ دعا ہے کہ جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ ہمارے والدین کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.